जय श्री राम। दोस्तों 5-6 नवंबर के दिन बृहस्पति धनु राशि में वापस आ रहे हैं 12 साल बाद। इस गोचर का आपके लग्न पर क्या असर होने वाला है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों में आपकी उन्नति संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं। इस वीडियो
कुंडली से भाग्य तत्व देखते हैं, ज्योतिष की शाखा है,
एस्ट्रो लाइफ सूत्रास।
अलग अलग लग्नों पर बृहस्पति के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, उस बारे में बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि इस बार का धनु में बृहस्पति का गोचर क्यों विशेष फलदायी है। देखिए, इस बार ऐसा होने जा रहा है कि जब बृहस्पति धनु राशि में होगा तो उसका साथ देने के लिए आध्यात्म का ग्रह केतु उसके साथ विराजित रहेगा लगभग पूरे समय। एक महीना छोड़ दिया जाए, आखिरी एक महीना, तो पूरे एक साल बृहस्पति केतु का यहाँ पर साथ रहेगा, या जब जब गुरु धनु में गोचर करेगा तब तब उसे केतु वहां विराजित मिलेगा। ये कई मायनों में शुभ भी है, कुछ मायनों में यह अशुभ है। शुभ इसलिए है कि यदि आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए जा रहे हैं, अगर आप साधना के लिए जा रहे हैं, तो परमात्मा की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अशुभ इसलिए है कि भाग्य स्थान में राहु केतु एक्सिस मौजूद है और उसमें भाग्य स्थान का स्वामी भी आ गया, तो ये दिखा रहा है कि फ्लक्चुएशन रहेगी आपके लक में। इस प्रकार रहेगी वो, जब हम लगन देखेंगे तो बात करेंगे। इसके अलावा एक चीज और होने जा रही है कि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव जहाँ धनु राशि आती है वहां गुरु का गोचर आने जा रहा है, जैसे अभी हमने कहा। साथ ही साथ 24 जनवरी के बाद से कर्म भाव का स्वामी काल पुरुष की कुंडली में जो शनि होता है वो कर्म भाव में गोचर करेगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है जो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे स्थायी बदलाव दुनिया में होंगे जो कि लोगों की उन्नति के लिए आवश्यक है। तो ये दो वो बातें हैं जो इस बार के गोचर को विशेष फलदायी बना रही है। अब ये भी जान लेते हैं कि आने वाले एक साल में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है जब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले तो 5 नवंबर को बृहस्पति का गोचर धनु में आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कहा। उसके बाद गुरु की स्पीड ज्यादा तेज रहेगी और 5 महीने में ही वो मकर राशि में एंटर कर जाएगा। तो 30 मार्च की डेट एक इंपॉर्टेंट डेट हमारे पास आती है जब गुरु धनु छोड़कर मकर में आ जाएगा। उसके बाद गुरु वक्री हो जाएगा, वक्री होने 22 तारीख को, 22 मई को, और वापस वो धनु में गोचर करने आएगा 30 जून। इसके बाद वो वापस मार्गी होगा वक्री से 14 सितंबर के दिन, और फिर वो धनु राशि को छोड़ेगा 20 नवंबर 2020 को। तो इस गोचर में लगभग 3 महीने के लिए वो मकर राशि को भी टच करेगा, जैसे पिछली बार उसने धनु को टच किया था। तो ये यहाँ नजर आता है, इन डेट्स को आप अपने पास लिख लीजिएगा, क्योंकि इन डेट्स के आसपास बदलाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं कुछ समय के लिए। आइए अब बात करते हैं मेष लगन की। यदि आप मेष लगन के जातक हैं तो आपकी पत्रिका में ऊपर की तरफ जो मिडल बॉक्स है वहां पर 1 लिखा होगा। अगर आपके पास आपकी जन्म पत्रिका अभी मौजूद है तो उसे खोलकर आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ 1 मेंशन है अपर मिडल बॉक्स में, तो ये गोचर जो अब हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए है। देखिए, बृहस्पति इस पर्टिकुलर लगन के लिए 1 शुभ और 1 अशुभ भाव का स्वामी बनता है। ये भाग्य का स्वामी भी बनता है, ये द्वादश भाव जो कि व्यय का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, उसको भी ओन करता है। लेकिन नियम ये कहता है कि जब बृहस्पति 2 राशियों का स्वामी बने या कोई भी ग्रह 12वें का स्वामी बने तो वो अपनी दूसरी राशि का फल देता है। इस आधार पर गुरु यहाँ पर शुभ माना जाता है मेष लगन के लिए, और अब तो उसका गोचर भी भाग्य स्थान में आने वाला है। तो ये अवधि ये दर्शाती है कि आपके भाग्य में उन्नति के योग है। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि केतु यहाँ बैठा है तो काम एक बार में नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। तो अपना प्रयास चालू रखिएगा, जैसे आप पिछले काफी समय से कर रहे हैं, अब उसका आउटपुट आने के चांसेस हाई है। साथ साथ ये आपके लगन को भी देखेगा, भाग्याधिपति जब लगन को देखे तो भाग्य, न केवल भाग्य के लिए अपितु सेहत के लिए भी ये समय विशेष लाभकारी है, अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ ये बृहस्पति तीसरे भाव पर भी दृष्टि डालेगा। भाग्यस्थान का स्वामी जब तीसरे भाव पर दृष्टि डालता है तो थोड़ी भागा दौड़ी बढ़ जाती है। वैसे भी मेष लगन के जातकों के साथ ही देखने में आता है कि वो टिक कर काम करने में उनके लिए परेशानी रहती है। तो ये गोचर उसी तरफ संकेत दिखाता है और ये बताता है कि इसमें बदलाव आने की संभावनाएं अधिक है, वो बदलाव आपके लिए आगे चलकर काफी लाभकारी रहेंगे। इसके अलावा यदि छोटे भाई बहनों का विवाह नहीं हुआ है तो इस अवधि में आप इस बारे में सोच सकते हैं कि छोटे भाई बहन का विवाह हो जाए। आपके लिए भी यदि आप संतान का विचार कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो ये अनुकूल समय है इस बारे में विचार करने का। अगर आपकी पढ़ाई में कुछ व्यवधान था, रुकी हुई है, दोबारा आरंभ करना चाहते हैं तो जरूर इस समय का सदुपयोग कीजिए, आपको लाभ रहेगा। एक बात का ध्यान आपको रखना है यहाँ पर, इस समय ईगोइस्टिक टेंडेंसी डेवलप हो सकती है, उससे थोड़ा बचने की प्रयास कीजिएगा, बिकॉज वो आपकी उन्नति में रोड़ा डाल सकती है। आइए अब बात करते हैं वृषभ लग्न। वृषभ लगन में बृहस्पति अष्टमेश और लाभेश होता है, दोनों ही भावों को शुभ फलदायक नहीं माना गया है। ऐसे में बृहस्पति का गोचर आया भी अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव में अष्टमेश का गोचर पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी मेडिटेशन में, योग में, साधना में लिप्त है तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, आपको बहुत लाभ रहेगा। अगर आपका काम, आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च पेपर सबमिट करवाना है तो ये बहुत बेहतरीन समय है वो सब करने का। यह इस बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर भी आएगी। द्वादश भाव पर इस जुपिटर की दृष्टि ये दर्शाती है कि पैतृक संपत्ति के लिए कुछ पैसा खर्च हो सकता है, खर्चे के योग यहाँ पे नजर आते हैं और वो खर्चे भी मन मुताबिक नहीं होंगे। कहने का अर्थ होता है कि एक खर्चा होता है जो इंटेंशनल हो और एक होता है मजबूरी में करना पड़े, तो मजबूरी में बल्क में अमाउंट खर्च करते हुए आप नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये धन भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है तो फ्लो ऑफ मनी बना रहेगा, ऐसा नहीं दिखता कि फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रंच देखने को मिले। फ्लो ऑफ मनी रहेगा, पैसा आएगा, जुड़ेगा नहीं, कहीं और खर्च हो जाएगा। ये चौथे भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। अष्टमेश का चौथे भाव पर दृष्टि डालना कोई बहुत विशेष लाभकारी होता नहीं है, लेकिन माता की सेहत के लिए, क्योंकि माता के लिए ये पंचमेश होकर देख रहा है, अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय प्रॉपर्टी के लिए, पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ रहेगा। ये कुछ बातें हैं जो वृषभ लगन के लिए है। जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, पैसा इन्वेस्ट करना इस समय नुकसान दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे। अब बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन में बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश बनता है और एक जीवन साथी का स्थान है और एक कर्म भाव का स्थान है। दोनों को ही इस लगन में विशेष लाभकारी नहीं माना गया है क्योंकि केंद्र आधिपत्य दोष के कारण बृहस्पति इस कुंडली में कोई विशेष लाभकारी नहीं आका जाता। लेकिन क्योंकि एक स्थायित्व का ग्रह है, एक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये मेरे अभी लगन और लाभ भाव को देखने जा रहा है, तो इस वजह से आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा समय है, विवाह के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर आपके पास आप विवाह की उम्र हो रही है और आप सोच रहे हैं कि कब स्टार्ट करना है रिश्ते देखना, तो भाई अब आप कर सकते हैं, इस समय अच्छे रिश्ते मिलने की संभावनाएं है। लगन पर दृष्टि इस बृहस्पति की यह भी दिखा रही है कि इस समय आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जीवन में जो कि आपसे उच्च पद पर आसीन होंगे या आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे और उनके साथ रहने के कारण आपको लाभ मिलेगा, उनकी संगति से आपको फायदा रहेगा, तो रेडी रहिएगा इस तरह की मीटिंग के लिए। तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति को संयमी बनाती है और ये दर्शाती है कि झगड़ों में इस समय आप वैसे नहीं पड़ेंगे। वैसे भी मिथुन लगन के लोग झगड़ों से जितना हो सके बचने का प्रयास करते हैं, बल से नहीं, तर्क से, ज्ञान से वो दूसरे को शांत करवाने की चेष्टा करते हैं, तो वो यहाँ पर नजर आता है। कुल मिला के ये समय ओवरऑल अच्छा है। जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि सामने वाले को ज्यादा प्लीज करने के चक्कर में, सामने वाले को ज्यादा खुश करने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि उसकी संभावना भी यहाँ पर प्रबल है। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए छठे भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति होता है, गोचर छठे भाव में ही आया है। ऐसी स्थिति में पहली जो संभावना है इस समय में होने की वो ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हुए थे या यूपीएससी की या किसी और तरह की, तो इस समय आपका वो क्रैक होने की संभावनाएं प्रबल है। यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पढ़ाई नितांत आवश्यक है। कुंडली में ऐसे योग भी होने चाहिए। अगर योग है, आप कर्म भी कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, तो इस समय आपको सहयोग मिलेगा भाग्य का भी, जिससे आप ये एग्जाम क्रैक कर पाए। तो मेहनत कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात, यही बृहस्पति दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। जो लोग नौकरी कार्य क्षेत्र के बारे में विचार कर रहे थे कि कब उनका कार्य क्षेत्र पहले से बेहतर होगा, अब समय आ रहा है कि उनके कार्य क्षेत्र में अब उन्नति के योग होते दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये बृहस्पति द्वादश को भी देखेगा, जो खर्चे और इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये भाग्य का स्वामी है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। बृहस्पति ऐसे में भाग्य का स्वामी जब कर्म भाव को और व्यय भाव दोनों को देखे, साथ ही साथ धन भाव को भी देखे, तो आर्थिक रूप से ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि इस समय पैसे का फ्लो, पैसा आना और जाना दोनों लगे रहेंगे, और इस समय की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका लॉन्गर रन में बड़ा अच्छा परिणाम आपको देखने को सुनने को मिलेगा। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके माता पिता को कोई रोग है, जो इनहेरिटेड जो इसे चलते हैं रोग, तो उस तरह के रोगों से बचने के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में उस तरह के रोग बढ़ सकते हैं या आपको भी हो सकते हैं। पर्टिकुलरली जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो इस समय अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल को ऐसे रखें कि ये बीमारी उनसे थोड़ा दूर रहे। आइए बात करते हैं अब सिंह लगन की। सिंह लगन के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि में बृहस्पति का गोचर आ रहा है। यहाँ पर भी बृहस्पति एक अच्छे और एक अशुभ भाव का स्वामी होता है, परंतु मूल त्रिकोण राशि धनु होने के कारण यहाँ पर बृहस्पति को ज्यादा शुभ माना गया है बनिस्पत कर्क लगन के। ऐसे में पंचम भाव में पंचमेश का गोचर अच्छा फलदायी है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन संतान प्राप्ति में कुछ कुछ बाधाएं यहाँ दिखती है, क्योंकि यहाँ पर अभी केतु महाराज भी गोचर कर रहे हैं। तो जब बृहस्पति केतु, या यूं कहूं कि पंचम भाव में पंचमेश का गोचर राहु केतु एक्सेस में होगा, तो वो अगर इस पीरियड में प्रेग्नेंट है लेडी या प्रेगनेंसी चल रही है, तो हम ध्यान रखने के लिए कहेंगे, और फल अच्छा मिल जाएगा, लेकिन बीच बीच में परेशानियां देखने को मिल सकती है। अग्नि तत्व राशि में बृहस्पति का गोचर पंचम में आना ये भी दिखाता है कि आपकी मंत्रणा शक्ति विशेष तेज होने वाली है, आपकी प्लानिंग अच्छी होने वाली है। जो काम की प्लानिंग आप काफी टाइम से कर रहे थे और उसको एग्जीक्यूट करने में परेशानी आ रही थी, वो उस तरह सोच नहीं पा रहे थे, अब आपके वो काम बनेंगे। साथ ही साथ ये बृहस्पति पंचम भाव प्रदेश नवम भाव प्रदेश डालेगा, क्षमा कीजिएगा, नवम भाव भाग्य का स्थान है, पंचमेश का भाग्य स्थान पर दृष्टि डालना गोचर में ये दिखाता है कि बौद्धिक क्षमता के द्वारा आप अपने भाग्य की उन्नति करेंगे, आप बेटर चॉइस करके अपने लक को और फेवरेबल बनाएंगे। ये लाभ भाव को भी देख रहा है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में विशेष लाभकारी होगा। साथ ही साथ ये लगन पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये दिखा रहा है कि इस समय सम्मान मिलने की संभावनाएं भी प्रबल है। जिन बातों को आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सिंह लगन के जातक होके बृहस्पति का गोचर जब पंचम में आता है, तो व्यक्ति का अहम स्वाभिमान बहुत बढ़ जाता है, और उस अभिमान के कारण कई गोल्डन अपॉर्चुनिटी उससे छूट जाती है। इस तरह के व्यवहार से बचिएगा, और अगर आप अपने ऊपर इस बात का कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये गोचर आपको आने वाला समय बहुत शुभ फल देकर जाएगा। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में चतुर्थेश और सप्तमेश बनता है बृहस्पति, जो कि यह दर्शाता है कि इस कुंडली के लिए विशेष लाभकारी बृहस्पति नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रह यदि केंद्र के स्वामी बने तो उनको विशेष लाभकारी नहीं माना जाता। अब बृहस्पति चौथे भाव में गोचर करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में चतुर्थेश का गोचर प्रॉपर्टी जनरेट होने के योग दिखा रहा है, लेकिन अगेन व्यवधान के साथ, क्योंकि केतु वहां पर विराजित रहेगा ऑलमोस्ट पूरे समय। साथ ही साथ ही बृहस्पति माता के लिए, माता की सेहत के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। आई नो ये लाइन थोड़ी अटपटी सी आपको लग रही होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में चतुर्थेश का गोचर तो शुभ होना चाहिए माँ के लिए, तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? उसका कारण है यहाँ पर राहु केतु की एक्सेस का होना। विशेषकर जब सितंबर माह में सॉरी दिसंबर माह में जब यहाँ से सूर्य का गोचर होगा तब विशेष ध्यान रखिएगा अपनी माता जी की सेहत का। उस समय अगर थोड़ा बहुत भी परेशानी शरीर को लेकर उनके हो तो प्रॉपर चेकअप करवाइएगा और लिथार्जिक टेंडेंसी से बचिएगा थोड़ा उस समय। प्लस ये बृहस्पति देखेगा आपके अष्टम भाव को, पैतृक संपत्ति मिलने के योग है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मिल सकती है। अगर आप रिसर्च वर्क में हैं तो भी ये बृहस्पति की दृष्टि वहां पर आपको कुछ फल प्रदान, पॉजिटिव फल प्रदान करेगी। अगर आप व्यवसाय में हैं तो मैं ये कहूंगा कि इस समय में कोई नया वेंचर स्टार्ट ना करें, बचिए थोड़ा नया वेंचर स्टार्ट करने से, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा यही बृहस्पति दशम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। दशम भाव पे बृहस्पति की चतुर्थेश और सप्तमेश होकर दृष्टि ये दिखाती है कि कार्यक्षेत्र में थोड़ी स्टेग्नेंसी आएगी, काम उस पेस पर नहीं बढ़ेगा जिस पेस पे बढ़ना चाहिए, पर स्थायित्व रहेगा। जॉब में कोई ज्यादा बदलाव होने की संभावना अभी होती हुई नहीं नजर आ रही, वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। और द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि को बढ़ाएगा, क्योंकि ये बृहस्पति अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों पे दृष्टि बना रहा है। एक चीज और जो इस चार्ट में नजर आती है कन्या लग्न वालों के लिए, इस समय कोई चीज आपके हाथ से छूटेगी, कोई आपकी अगर मान लीजिए कोई ऐसा वेंचर है जो उस तरह से फायदा नहीं दे रहा जिस तरह से आपने सोचा था और अब आप उसमें बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो ये राइट टाइम है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। इस समय आप कोई पुराना वेंचर जो फ्रूटफुल नहीं है उसको वाइंड अप कर सकते हैं। मतलब मुझे ये नजर आता है कि इस समय में आपके हाथ से किसी चीज का त्याग, किसी चीज का दूर जाना दिख रहा है। आइए अब बात करते हैं तुला लगन की, कि तुला लगन के जातकों के लिए किस प्रकार का ये समय रहेगा। देखिए तुला लगन में बृहस्पति कोई विशेष लाभकारी होता नहीं है, तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होता है। ऐसे में बृहस्पति का गोचर आया भी तीसरे भाव में है तो ये कोई विशेष लाभकारी समय आपके लिए है नहीं। हालांकि 24 जनवरी के बाद स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा और आपके लिए शनि का गोचर लाभकारी होगा। हो सका तो उस पर भी हम एक वीडियो करेंगे और आपको बताएंगे कि शनि के गोचर से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, पर फिलहाल इस बृहस्पति के गोचर से कोई विशेष लाभ होता नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर दिखता है कि कुछ चीजें जो आप बदलना चाह रहे थे लाइफ में अब आप बदल पाएंगे, चेंजेस होते दिख रहे हैं, मूवमेंट होती दिख रही है। यही बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य स्थान को देख रहा है। जब तीसरे भाव का स्वामी भाग्य स्थान को देखे तो हम कहते हैं कि अगर आप कुछ बदलाव करते हैं इस समय में अपने भाग्य की उन्नति के लिए तो अभी आप इनपुट दीजिए, अभी वहां से अपेक्षा मत कीजिए कि कुछ आएगा। मेरा कहने का मतलब है इस समय प्रयास का समय है, उसके रिजल्ट को भोगने का समय फिलहाल नहीं है। यही बृहस्पति लाभ भाव पर भी देख रहा है, क्योंकि बृहस्पति इस लगन में कोई विशेष लाभकारी नहीं है। और एक बात और कहूंगा, उपचय स्थान का स्वामी है यहाँ पे बृहस्पति। तीसरा छठा घर दोनों उपचय भाव होते हैं, ऐसे में ग्यारहवें पे उपचय स्थान अधिपति की दृष्टि भागा दौड़ी करवाएगी, आर्थिक लाभ भी दे सकती है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाली। यहाँ पर ये दिखेगा कि आप मेहनत करे जा रहे हैं, एफर्ट करे जा रहे हैं और उसका आउटकम वैसा नहीं आ रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ फाइनेंशियल गेन होता दिख रहा है। साथ ही साथ ये सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो यदि आपकी विवाह योग्य उम्र है और आप लड़के के लिए या लड़की के लिए सर्च कर रहे हैं तो इस समय अच्छे प्रपोजल मिलने के कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा और इस समय का उपयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति विशेष लाभकारी होता है, धन भाव का स्वामी होता है, संतान भाव का स्वामी होता है। अब धन भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर ये दर्शाता है कि आर्थिक रूप से ये उन्नति का समय है, लेकिन अगेन मुझे ये कहना पड़ेगा कि क्योंकि वहां केतु विराजित है और केतु कट ऑफ करता है, केतु विरक्त करता है, तो यहाँ पर पैसा आ रहा है लेकिन एक मुश्त नहीं, या यूं कहूं उल्टा मुझे कहना चाहिए, एक मुश्त आ रहा है और फिर वो टुकड़ों में जा रहा है ये नजर आता है। तो इस समय आर्थिक रूप से समय में मिला जुला ही कहूंगा कि पैसा आएगा जरूर लेकिन टिकने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उधार बिल्कुल मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा अगर आपके पास पैसा है कहीं कोई नई जगह पे इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्टमेंट उस तरह से रिजल्ट अभी फिलहाल देती नहीं दिख रही है। यही बृहस्पति अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा, अष्टम भाव क्योंकि पतन का है, अष्टम भाव क्योंकि मेरे पैतृक संपत्ति का है, तो वहां कुछ पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनाता है। परंतु अष्टम का स्वामी होने के कारण यह अध्यात्म की तरफ भी रुचि को बढ़ाता दिख रहा है। दशम भाव को देखेगा, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में अभी की गई मेहनत बहुत अच्छा परिणाम आपको देगी। जो पीछे कुछ समय से आप कोशिश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, उसको अब एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। एग्जीक्यूट कीजिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। यही बृहस्पति छठे घर को भी देखता है। यदि किसी चीज के लिए लोन लेकर कार्य स्टार्ट करने का आपका विचार था कि पैसा लेकर हम कार्य आरंभ करेंगे, तो लोन के लिए कोशिश कीजिए। इस समय लोन मिलने में आसानी होगी और उसका उपयोग भी सही जगह पर होगा। आइए अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए लग्नेश और चतुर्थेश बनता है बृहस्पति, और ऐसे में बृहस्पति का लग्न में गोचर बहुत ही खूबसूरत योग है, बहुत ही फेवरेबल कॉम्बिनेशन है ये जातकों के लिए। अब इसका फल क्या होने वाला है? बृहस्पति का लग्न में गोचर आना आप में कॉन्फिडेंस की वृद्धि करेगा, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे। जिन कामों के बारे में जो लो कॉन्फिडेंस आप अभी फील कर रहे थे, जॉब में थे तो जिस तरह से आपके अप्रेजल होने में दिक्कतें आ रही थी, वो चीजें अब सॉर्ट आउट होगी और आपकी वैल्यू सामने वाला बंदा पहचानेगा। ये बृहस्पति सप्तम भाव पर भी दृष्टि दे रहा है, इस कारण विवाह होने के योग भी बनते हैं, पार्टनरशिप से काम करने के योग बनते हैं, लेकिन अपने धर्म के लोगों के साथ नहीं, या अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं। ये बृहस्पति भाग्य स्थान को भी देखेगा, तो जातक अपनी भाग्य वृद्धि के लिए प्रयास करेगा और भाग्योन्नति की कुछ स्टेप लेगा जो आगे चलकर इसको फायदा देगा। ये बृहस्पति पंचम भाव को भी देख रहा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, फर्दर एजुकेशन अटेन करने के लिए अच्छा समय है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब कभी लग्न में लग्नाधिपति गोचर कर रहा हो और साथ में पाप प्रभाव के दो ग्रह उसमें आ जाएं, जैसे केतु आ बैठा है और सूर्य दिसंबर में वहां से गुजरेगा, सेहत का ध्यान रखिए और गुरूर ना आने दें, क्योंकि जब लग्नाधिपति लग्न में आता है और ये आपको एक जो समय था जब तक वो वक्री रहेगा, जो डेट्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, उन डेट्स पर तो विशेष ध्यान रखिए। आप गलती में या कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के कारण आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उसको फिर चुकाने में, उसको पूरा करने में दुख होगा, तो बेहतर है इस समय आप कोई बड़ा निर्णय ना ले जब वो वक्री गुरु चल रहा हो, एक इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जैसे मैंने कहा, आप सुनने की शक्ति भी रखें, सलाह लेने की मन भी अपना बना के रखें कि अगर कोई व्यक्ति सलाह दे रहा है तो उसको ध्यान से सुना जाए। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न में 12वें और 30वें दोनों या अनिष्ट भावों का स्वामी बनता है बृहस्पति, और ऐसे में द्वादश भाव में ही गोचर आया है। विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे थे, हाँ इस समय आपका योग बनता है बाहर जाने का, खर्चे थोड़े ज्यादा रहेंगे इस समय, वो नजर आता है। चतुर्थेश क्योंकि छठे भाव, क्षमा कीजिएगा, वेश क्योंकि छठे भाव को देख रहा है, तो बीमारी पर खर्चे होने के योग है, तो इस बात का ध्यान रखें। लिटिगेशन पर किसी झगड़े में ना पड़े, पड़े तो उसको कोर्ट केस तक ना लेके जाए, क्योंकि आने वाले एक साल में लिटिगेशन पर और मेडिकल क्या कहें एक्सपेंडिचर होते ज्यादा दिख रहे हैं आपकी कुंडली में। चतुर्थ भाव पर वेश की दृष्टि होना ये दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी बनाते वक्त या कुछ उसको रिकंस्ट्रक्ट करते वहां पर पैसा खर्च आपका हो सकता है, उस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ये भी है कि वेश इस कुंडली में तीसरे भाव का भी स्वामी है, ऐसी स्थिति में ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति को घर बदलना पड़ सकता है इस समय। ये अष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, फिर 4 और 12 का संबंध है, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी लग्न के बारे में कहा था, आपके हाथ से कोई चीज छूटती नजर आ रही है, कोई पुरानी चीज कंप्लीट होती टर्मिनेट होती नजर आ रही है और कोई एक नई शुरुआत का समय आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और चीजों से थोड़ा मोह कम रखिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में दोनों धन भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, और ऐसे में गुरु का गोचर लाभ भाव का गोचर लाभ भाव में ही आया है, जो कि विशेष लाभकारी है। एथिकल तरीकों से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती दिख रही है, पैसा भी अच्छा आता दिख रहा है। बौद्धिक क्षमता का विकास होता दिख रहा है। छोटे भाई बहनों के लिए भी मैं यहाँ पर कहूंगा कि उनका आर्थिक विकास भी इस कुंडली में नजर आता है। सप्तम भाव पर बृहस्पति का गोचर आएगा तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और जो प्रयास कर रहे हैं उनके विवाह के योग बनते दिख रहे हैं। छोटे भाई बहनों की तरक्की के योग बन रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, और व्यक्ति की पढ़ाई के लिए भी विशेष लाभकारी समय है। कुल मिलाकर ये समय आप लोगों को एक आर्थिक स्टेटस देने वाला है, आर्थिक उन्नति देने वाला है। और इस समय इस बात का ध्यान रखें कि लेथार्जिक ना हो, एक्टिव रहें, नए काम के लिए रेडी रहें, नए काम से आपको विशेष लाभ होगा। और यदि आप अपने अपने आप को आलस्य में या प्रमाद में लगा लेते हैं तो इस समय का सदुपयोग कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्नति सीमित रह जाएगी। तो प्रयास कीजिए कि आप एक्टिव रहें, नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करने की कोशिश करें और वहां से कुछ अर्न करने की भी कोशिश करें। जो लोग इस समय सलाहकार या ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में हैं जो कि टीचिंग से जुड़ा है, लोगों को सलाह देने से जुड़ा है, उनके लिए विशेष लाभकारी समय रहेगा। अब बात करते हैं आखिरी लगन यानी मीन लगन की। मीन लगन में बृहस्पति लग्नाधिपति और दशम भाव दोनों का स्वामी होता है, कुंडली के दो बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेस जुपिटर के पास होते हैं। ऐसे में जुपिटर का 10th हाउस में गोचर ये दिखा रहा है कि इस समय व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ताकत झोंकने वाला है। मीन लगन में ना एक दिक्कत ये रहती है कि ये द्वंद्वात्मक लग्न है, कंफ्यूजन या क्या कहूं, दो निर्णयों के बीच में हमेशा कंफ्यूज कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, उसकी संभावना रहती है। अभी प्रयास कीजिए उससे बचने का। कोई अगर आप मेंटर बना सकते हैं जो आपको गाइड कर सके कि दोनों में से कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है, तो वो बहुत लाभ देगा इस समय में। जैसे मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में लग्नेश का गोचर आना कार्य क्षेत्र के लिए उन्नतिदायक है। दशम भाव का स्वामी भी दशम में गोचर करेगा, वो भी बढ़िया है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये बृहस्पति केतु के बहुत समीप पहुंच जाए उस समय जॉब में बदलाव मत कीजिएगा, उस समय जॉब पर खतरा रह सकता है, खतरा हो सकता है। ये बृहस्पति धर्म अर्थ त्रिकोण में गोचर कर रहा है और अर्थ त्रिकोण के बाकी दो भावों को देख रहा है, तो आर्थिक उन्नति का योग कुंभ लगन के जैसे ही मीन लगन में भी बराबर बना हुआ है और यहाँ पर मेहनत से अर्न होता दिख रहा है। ये बृहस्पति चौथे भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, जो ये दर्शाता है कि सभी प्रॉपर्टी बनने के योग है। प्रॉपर्टी के लिए आप प्रयास करेंगे, कोई नई चीज घर में, गाड़ी लेने के, कोई घर में नया प्रोडक्ट लेने के लिए बेहतरीन समय है, उस बारे में आप सोच सकते हैं। छठे घर पे बृहस्पति की दृष्टि, इस समय कर्ज लेने में भी आपको आसानी रहेगी, लोन वगैरह लेने की संभावना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बड़ा अच्छा समय है, इसमें आपको उन्नति मिलने के योग दिखते हैं। मीन लगन में जब बृहस्पति दशम भाव में आए तो हम केवल इस बात के बारे में जरूर बताना चाहेंगे या सलाह देना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखें। इस समय वैवाहिक जीवन पर ध्यान कम देने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव रह सकता है। तो ये था 12 लग्नों में बृहस्पति का फल। इस गोचर को लगाते वक्त कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उनमें से एक बात यह है कि यदि आपका बृहस्पति की दशा है तो ये गोचर आपको ज्यादा फल देगा, जो मैंने आज आपको बताया उसका फल ज्यादा आपको मिलेगा। यदि बृहस्पति आपका दशानाथ, अंतरदशानाथ या प्रत्यंतर दशानाथ नहीं है तो इसका कुछ क्या कहूँ, अंशमात्र प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गोचर ही सब कुछ नहीं होता। जन्म पत्रिका में अपनी संभावनाएं होती है, उसी को फलीभूत करने में गोचर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यदि कुंडली में संभावना ही नहीं है तो गोचर तो आते जाते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आने वाले वीडियो में प्रयास रहेगा कि चंद्र लगन से या चंद्र राशि से इस गोचर को किस प्रकार देखा जा सकता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। इस तरह गोचर के ऊपर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ, इस तरह के वीडियो की आवश्यकता आप लोगों को है, क्या क्या कमी आपको लगी अगर आप बताना चाहें तो आप जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।